प्रणाली उन दोनों को गुस्से में घूर ही रही थी कि इतने में उसका फोन, जो उसके पर्स में रखा था, वो वाइब्रेट होता है। क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था, इसीलिए अरुणिमा और जानवी को भी फोन की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी। प्रणाली अपने पर्स में हाथ डालकर अपना फोन निकालती है तो जीवन की कॉल आ रही थी। वो फोन काट देती है और उन दोनों को देखकर कहती है, मैं फैशन हाउस जा रही थी। जानवी कहती है, लेकिन तुमने तो फैशन हाउस की दो दिन की छुट्टी रखी हुई है ना, आज तुम्हारी सगाई है इस वजह से। वैसे भी अगर तुम्हें फैशन हाउस जाना भी है तो इतनी सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले फैशन हाउस जाकर क्या करोगी। प्रणाली अपनी नजरें तीखी करते हुए कहती है, तुम्हारी शादी तो बिना किसी फंक्शन की हो गई है, ना तो कोई बारात गई और ना ही कोई लोग आए, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि किसी लड़की के लिए शादी कितना स्पेशल ओकेजन होता है जिसके लिए वो तैयार होती है। मैं अपनी सगाई पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने अपने खुद के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन की है, पर कल रात मेरी असिस्टेंट का कॉल आया कि उस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि जब मैं शाम को फंक्शन पर वो ड्रेस पहनूं तो वो अनकंफर्टेबल हो, इसीलिए मैं फैशन हाउस जा रही हूँ अपनी खुद की ड्रेस रीचेक करने के लिए। जानवी कुछ कहने के लिए आगे ही आ रही थी कि अरुणिमा ने जानवी को देखते हुए कहा, जाने दो जानवी, वैसे भी ये हमारे मना करने से रुकेगी थोड़ी ना। उसके बाद अरुणिमा ने प्रणाली को देखकर कहा, जा रही हो ठीक है, पर अकेली नहीं जाओगी, डार्ड्स और ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रणाली मुंह बनाते हुए गुस्से में उन दोनों को देखकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद अरुणिमा जानवी से कहती है, रहने दो, खामोखा का बहस करने की जरूरत नहीं है, जब तक शादी नहीं होती है बस तब तक बर्दाश्त करना है उसे। प्रणाली महल से निकलकर गाड़ी में बैठी हुई थी, उसके साथ एक बॉडीगार्ड और सामने ड्राइवर बैठा हुआ था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो बॉडीगार्ड और ड्राइवर को अपने साथ नहीं लेकर आएगी तो अरुणिमा उसे महल से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका फोन बार बार बज रहा था। प्रणाली ने अपना फोन साइलेंट किया और जीवन को एक मैसेज किया कि वो घर से निकल चुकी है, बस थोड़ी ही देर में फैशन हाउस पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ से जीवन का ओके का मैसेज आता है। प्रणाली के महल से बाहर निकलते ही उसके पीछे एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। उसने गाड़ी में बैठे अपना फोन निकाला और सामने किसी को फोन करते हुए कहा, रजत वो घर से निकल चुकी है। सामने से रजत ने कहा, पीछा करो। थोड़ी ही देर बाद प्रणाली की गाड़ी उसके फैशन हाउस के सामने रुकती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके साथ बॉडीगार्ड भी बाहर निकलते हैं। प्रणाली उस बॉडीगार्ड को देखकर कहती है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। लेकिन बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी राजकुमारी जी, लेकिन हमें ऑर्डर मिले हैं कि हमें आपके साथ रहना है। प्रणाली ने गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मैंने कहा यहाँ पर खड़े होकर मेरा इंतजार करो, तो यहीं पर खड़े रहना। ये कहकर प्रणाली अपने फैशन हाउस की तरफ निकल जाती है। वो लिफ्ट का बटन दबाती है और अपने फ्लोर पर जाती है। फ्लोर पर पहुंचकर वो सबसे पहले वहां की सारी लाइट्स ऑन करती है, क्योंकि इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ थी और सब जगह अंधेरा था। प्रणाली अपना फोन निकालती है और जीवन को कॉल करती है। एक रिंग के बाद ही जीवन फोन उठाता है और कहता है, हाँ कहाँ हो तुम। प्रणाली कहती है, मैं फैशन हाउस पहुंच गई हूँ, तुम पीछे के रास्ते से आ जाओ, पर थोड़ा संभल कर क्योंकि सामने के रास्ते पर गार्ड्स खड़े हैं। जीवन हाँ में सर हिलाता है और वो पीछे के रास्ते प्रणाली के फैशन हाउस में आ जाता है। प्रणाली पीछे वाला दरवाजा खोल देती है। जीवन जैसे ही अंदर आता है, प्रणाली जल्दी से जीवन के गले लग जाती है। जीवन भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू बेबी, मुझे मालूम था कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरी प्रणाली मेरी मदद जरूर करेगी। प्रणाली भी मुस्कुराते हुए जीवन को देखकर कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रणाली जीवन को अपने वर्क प्लेस पर ले जाती है, वहां पर बहुत सारे कार्टून के बॉक्स रखे हुए थे। जीवन उन सारे बॉक्स को देखकर कहता है, तो यही वो सारा सामान जो आज रात मुंबई पहुंचने वाला है। प्रणाली हाँ में सर हिलाती है तो जीवन कहता है, ठीक है, बस तुमने यहाँ तक कर दिया है, इसके आगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपने फैशन हाउस की डुप्लीकेट चाबी दे दो। प्रणाली अपने बैग से चाबी निकालती है और जीवन को दे देती है, लेकिन चाबी देने के बाद वो जीवन से सवाल करती है, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें अचानक से इन सब की क्या जरूरत पड़ गई। तुमने अचानक से पूछ लिया कि मेरा अगला कंसाइनमेंट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और उसके बाद अचानक से तुमने सुबह सुबह मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो। जीवन को पहले तो प्रणाली के सवाल से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए प्रणाली के कंधे पर हाथ रखा और इसे देखते हुए कहा, अरे बेबी, तुम्हें पता है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट कितना ज्यादा टैक्स लगाती है, और वैसे भी अभी कुछ ही समय बाद तो हमारी शादी होने वाली है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद तुम्हें अपने पैसों से वर्ल्ड टूर पर हनीमून पर ले जाऊंगा, लेकिन तभी मेरे बिजनेस पार्टनर का मुझे कॉल आ गया कि उन्हें अर्जेंट में हमारे प्रोडक्ट का पार्सल चाहिए। अब ऐसे में अगर मैं अपनी तरफ से उनका कंसाइनमेंट को भेजा तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और फिर हमारे हनीमून का क्या होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा कंसाइनमेंट तो जा ही रहा है, उसी में मैं अपना कंसाइनमेंट ऐड कर दूंगा। वैसे भी अब तुम्हारे और मेरे पैसे अलग अलग थोड़ी ना है, हम दोनों तो एक ही है ना। जीवन की बात सुनकर प्रणाली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, अब तो हम दोनों एक ही हैं। तुम एक काम करो, मेरे इन सारे बॉक्स में अपने बॉक्स भी ऐड कर दो, दोनों पार्सल एक साथ चले जाएंगे, और मुंबई पहुंचकर तुम अपने स्टाफ से कहना वो इसमें से तुम्हारा पार्सल निकाल देंगे। जीवन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए प्रणाली को अपनी बाहों में भर लेता है। प्रणाली भी उसकी बाहों में सिमटते हुए खुश होती है,
लेकिन प्रणाली को अपनी बाहों में लेने के बाद जीवन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आज रात प्रणाली जीवन की सगाई के समय प्रणाली का एक कंसाइनमेंट मुंबई के लिए निकलने वाला था। ये अर्जेंट बेस पर रेडी किया गया कंसाइनमेंट था जिसके लिए प्रणाली काफी समय से तैयारी कर रही थी, पर क्योंकि आज उसकी और जीवन की सगाई भी थी इसीलिए उसने वक्त से पहले सारा काम खत्म कर लिया था। लेकिन जीवन ने उसे कॉल करके ये कह दिया कि वो उसके कंसाइनमेंट में अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है ताकि दोनों एक साथ ही मुंबई चले जाएं।